क्रमांक 251। द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह न देखना पड़े। क्रमांक 252। वेद ज्ञान के लक्ष्य से विकल्पात्मक भूमिका में आगम का चिंतवन मुख्य रखना, विशेष शास्त्र ज्ञान मार्ग की चतुर्दिशा सूझने का कारण बनता है। वह सतमार्ग को सुगम बनाता है। क्रमांक 253। आत्मा को तीन काल की प्रतीति करने के लिए ऐसे विकल्प नहीं करने पड़ते कि मैं भूतकाल में शुद्ध था, वर्तमान में शुद्ध हूँ, भविष्य में शुद्ध रहूँगा, परंतु वर्तमान एक समय की प्रतीति में तीनों काल की प्रतीति समा जाती है, आ जाती है। क्रमांक 254। जिस प्रकार जीव को अपने में होने वाले सुख दुख का वेतन होता है, वह किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता, उसी प्रकार अपने को स्वानुभूति होती है, वह किसी से पूछना नहीं पड़ता। क्रमांक 255। अंतर का अपरिचित मार्ग, अंतर में क्या घटमाल चलती है, उसका आगम एवं गुरु की वाणी से ही निर्णय किया जा सकता है। भगवान की स्यादवाद वाणी ही तत्व का प्रकाशन कर सकती है। जिनेन्द्र वाणी और गुरुवाणी का अवलंबन साथ रखना, तभी तू साधना की डग भर सकेगा। क्रमांक 256। साधक दशा की साधना ऐसी कर कि जिससे तेरा साध्य पूरा हो। साधक दशा भी अपना मूल स्वभाव तो है नहीं, वह भी प्रयत्न रूप अपूर्ण दशा है, इसलिए वह अपूर्ण दशा भी रखने योग्य तो है ही नहीं। क्रमांक 257। शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके तथा अशुद्धता को ख्याल में रखकर तू पुरुषार्थ करना तो मोक्ष प्राप्त होगा। क्रमांक 258। तू विचार कर, तेरे लिए दुनिया में एक आत्मा के सिवा और कौन आश्चर्यकारी वस्तु है? कोई नहीं। जगत में तूने सब प्रकार के प्रयास किए, सब देखा, सब किया, परंतु एक ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, अनंत गुणमय ऐसे आत्मा को कभी पहचाना नहीं। उसे पहचान, बस वही एक करना, बाकी रह जाता है। क्रमांक 259। किसी प्रकार की प्रवृत्ति में खड़ा रहना, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक आत्मा में ही रहना, वह हितकारी, कल्याणकारी और सर्वस्व है। क्रमांक 260। शुद्धात्मा को जाने बिना भले ही क्रिया की ढेर लगा दें, परंतु उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता, ज्ञान से ही आत्मा जाना जा सकता है। क्रमांक 261। दृष्टि पूर्ण आत्मा पर रखकर तू आगे बढ़ तो सिद्ध भगवान जैसी दशा हो जाएगी। यदि स्वभाव में अधूरापन मानेगा तो पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसलिए तू अधूरा नहीं, पूर्ण है ऐसा मान। द्रव्य सूक्ष्म है, इसलिए उपयोग को सूक्ष्म कर तो सूक्ष्म द्रव्य पकड़ में आएगा। सूक्ष्म द्रव्य को पकड़कर आराम से आत्मा में बैठना, वह विश्राम है। क्रमांक 263। साधना करने वाले को कोई स्पृहा नहीं होती। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा ही चाहिए। इस क्षण वितरागता होती हो तो दूसरा कुछ ही नहीं चाहिए, परंतु अंतर में नहीं रहा जाता, इसलिए बाहर आना पड़ता है। अभी केवल ज्ञान होता हो तो बाहर ही ना आए। क्रमांक 264। तेरे चित्त में जब तक दूसरा रंग समाया है, तब तक आत्मा का रंग नहीं लग सकता। बाहर का सारा रस छूट जाए तो आत्मा ज्ञायक देव प्रकट होता है। जिसे गुण रत्नों से गूंथा हुआ आत्मा मिल जाए, उसे इन तुच्छ विभागों से क्या प्रयोजन। क्रमांक 265। आत्मा जानने वाला है, सदा जागृत स्वरूप ही है। जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा को पहचाने तो पर्याय में भी जागृति प्रकट हो। आत्मा जागती ज्योति है, उसे जान। क्रमांक 266। यदि तुझे जन्म मरण का नाश करके आत्मा का कल्याण करना हो तो इस चैतन्य भूमि में खड़ा रहकर तू पुरुषार्थ कर, तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। आचार्य देव करुणा पूर्वक कहते हैं, तू मुक्त स्वरूप आत्मा में निस्पृहता से खड़ा रह, मोक्ष की स्पृहा और चिंता से भी मुक्त हो, तू स्वयमेव सुख रूप हो जाएगा। तेरे सुख के लिए हम यह मार्ग बतला रहे हैं। बाहर के व्यर्थ प्रयत्न से सुख नहीं मिलेगा। क्रमांक 267। ज्ञानी द्रव्य के आलंबन के बल से ज्ञान में निश्चय व्यवहार के मैत्री पूर्वक आगे बढ़ता जाता है और चैतन्य स्वयं अपनी अद्भुतता में समा जाता है। क्रमांक 268। बाह्य रोग आत्मा की साधक दशा को नहीं रोक सकते, आत्मा की ज्ञातृत्व धारा को नहीं तोड़ सकते। पुद्गल परिणति रूप उपसर्ग कहीं आत्म परिणति को नहीं बदल सकते। क्रमांक 269। अहो, देव शास्त्र गुरु मंगल है, उपकारी है। हमें तो देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है, उन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है। गुरुदेव का अपार उपकार है, वह उपकार कैसे भुला जाए। गुरुदेव का द्रव्य तो अलौकिक है, उनका श्रुत ज्ञान और वाणी आश्चर्यकारी है। परम उपकारी गुरुदेव का द्रव्य मंगल है, उनकी अमृतमयी वाणी मंगल है, वे मंगल मूर्ति हैं, भवोदधि तारणहार हैं, महिमावंत गुणों से भरपूर हैं। पूज्य गुरुदेव के चरण कमल की भक्ति और उनका दासत्व निरंतर हो। क्रमांक 270। अपनी जिज्ञासा ही मार्ग बना लेती हैं। शास्त्र साधन है, परंतु मार्ग तो अपने से ही ज्ञात होता है। अपनी गहरी तीव्र रुचि और सूक्ष्म उपयोग से मार्ग ज्ञात होता है, कारण देना चाहिए। क्रमांक 271। जिसकी जिसे तन्मयता से लगन हो, उसे वह नहीं भूलता। यह शरीर सो मैं, वह नहीं भूलता। नींद में भी शरीर के नाम से बुलाए तो उत्तर देता है, क्योंकि शरीर के साथ तन्मयता की मान्यता का अनादि अभ्यास है। अनभ्यस्त ज्ञायक के अंदर जाने के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, धीर होना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है, वह कठिन लगता है। बाह्य कार्यों का अभ्यास है इसलिए सरल लगते हैं, लेकिन जब भी कर तब तुझे ही करना है। क्रमांक 272। जो खूब थका हुआ है, द्रव्य के सिवा जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसे आशा पिपासा छूट गई है, द्रव्य में जो हो वही जिसे चाहिए, वह सच्चा जिज्ञासु है। द्रव्य जो कि शांतिमय है वही मुझे चाहिए, ऐसी निस्पृहता आए तो द्रव्य में गहरा जाए और सब पर्याय प्रकट हो। क्रमांक 273। गुरु के हितकारी उपदेश के तीक्ष्ण प्रहारों से सच्चे मुमुक्षु का आत्मा जाग उठता है और ज्ञायक की रुचि प्रकट होती है। बारंबार चेतन की ओर ज्ञायक की ओर झुकाव होता है। जैसे भक्त को भगवान मुश्किल से मिले हो तो उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हे चेतन, हे ज्ञायक, ऐसा बारंबार अंतर में होता रहता है, उसी ओर रुचि बनी रहती है। चलते फिरते प्रभु की याद आए रे, ऐसा बना रहता है। क्रमांक 274। अनंत काल में चैतन्य की महिमा नहीं आई, विभाव की तुच्छता नहीं लगी, पर से विभाव से विरक्तता नहीं हुई, इसलिए मार्ग नहीं मिला। क्रमांक 275। पंचम काल है इसलिए बाहर फेरफार होता है, परंतु जिसे आत्मा का कल्याण करना है उसे काल बाधक नहीं होता। क्रमांक 276। शुभाशुभ भाव से भिन्न मैं ज्ञायक हूँ, यह प्रत्येक प्रसंग में याद रखना। वेद ज्ञान का अभ्यास करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। क्रमांक 277। पर से विरक्तता नहीं है, विभाव की तुच्छता नहीं लगती, अंतर में इतनी उत्कंठा नहीं है, फिर कार्य कहाँ से हो? अंतर में उत्कंठा जागृत हो तो कार्य हुए बिना रहता ही नहीं, स्वयं आलसी हो गया है, करूंगा करूंगा कहता है परंतु करता नहीं है। कोई तो ऐसे आलसी होते हैं कि सोते हो तो बैठते नहीं हैं और बैठे हो तो खड़े होने में आलस्य करते हैं। उसी प्रकार उत्कंठा रहित आलसी जीव कल करूंगा कल करूंगा ऐसे मंद रूप वर्तते हैं। वहां कल की आज नहीं होती और जीवन समाप्त हो जाता है। क्रमांक 278। जैसे किसी को ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर अधिक ताप और तीव्र तृषा लगी हो, उस समय पानी की एक बूंद की ओर भी उसका लक्ष्य जाता है और वह उसे लेने को दौड़ता है, उसी प्रकार जिस जीव को संसार का ताप लगा हो और सत की तीव्र पिपासा जागी हो, वह सत की प्राप्ति के लिए उग्र प्रयत्न करता है। वह आत्मार्थी जीव ज्ञान लक्षण द्वारा ज्ञायक आत्मा की प्रतीति करके अंतर से उसके अस्तित्व को ख्याल में ले तो उसे ज्ञायक तत्व प्रकट हो। क्रमांक 289। विचार मंथन सब विकल्प रूप ही है, उससे भिन्न विकल्पातीत एक स्थायी ज्ञायक तत्व सो आत्मा है। उसमें यह विकल्प तोड़ दूं, यह विकल्प तोड़ दूं, वह भी विकल्प ही है। उसके उस पार भिन्न ही चैतन्य पदार्थ है, उसका अस्तिपना ख्याल में आए, मैं भिन्न हूँ, यह मैं ज्ञायक भिन्न हूँ, ऐसा निरंतर घोटन रहे, वह भी अच्छा है। पुरुषार्थ की उग्रता तथा उस प्रकार का आरंभ हो तो मार्ग निकलता ही है। पहले विकल्प नहीं टूटता, परंतु पहले पक्का निर्णय आता है। क्रमांक 280। वास्तव में जिसे स्वभाव रुचि अंतर की जागृति हो उसे बाहर आना सुहाता ही नहीं। स्वभाव शांति एवं निवृत्ति रूप है। शुभाशुभ विभाव भावों में आकुलता और प्रवृत्ति है, उन दोनों का मेल ही नहीं बैठता। क्रमांक 281। बाहर के सब कार्यों में सीमा मर्यादा होती है, अमर्यादित तो अंतर्ज्ञान और आनंद है, वहाँ सीमा मर्यादा नहीं है। अंतर में स्वभाव में मर्यादा नहीं होती। जीव को अनादिकाल से जो बाह्य वृत्ति है उसकी यदि मर्यादा ना हो तब तो जीव कभी उससे विमुख ही ना हो, सदा बाह्य में ही रुका रहे। अमर्यादित तो आत्म स्वभाव ही है, आत्मा अगाध शक्ति से भरा है। क्रमांक 282। यह जो बाह्य लोक है उससे चैतन्य लोक पृथक ही है। बाह्य में लोग देखते हैं कि इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, परंतु अंतर में ज्ञानी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वह तो ज्ञानी स्वयं ही जानते हैं। बाहर से देखने वाले मनुष्य को ज्ञानी बाह्य में कुछ क्रियाएं करते या विकल्पों में पड़ते दिखाई देते हैं, परंतु अंतर में तो वे कहीं चैतन्य लोक की गहराई में विचरते हैं। क्रमांक 283। द्रव्य तो अनंत शक्ति का स्वामी है, महान है, प्रभु है। उसके सामने साधक के पर्याय अपनी पामरता स्वीकार करती हैं। साधक को द्रव्य पर्याय में प्रभुता और पामरता का ऐसा विवेक वर्तता है। क्रमांक 284। साधक दशा तो अधूरी है। साधक को जब तक पूर्ण वितरागता न हो और चैतन्य आनंद धाम में पूर्ण रूप से सदा के लिए विराजमान न हो जाए तब तक पुरुषार्थ की धारा तो उग्र ही होती जाती है। केवल ज्ञान होने पर एक समय का उपयोग होता है और वह समय के ज्ञान पर्याय तीन काल एवं तीन लोक को जान लेती है। क्रमांक 285। स्वयं पर से और विभाव से भिन्नता का विचार करना चाहिए। एकता बुद्धि तोड़ना वह मुख्य है। प्रतिक्षण एकत्व को तोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। क्रमांक 286। यह तो अनादि का प्रवाह मोड़ना है। कार्य कठिन तो है परंतु स्वयं ही करना है। बाह्य आधार किस काम का, आधार तो अपने आत्म तत्व का लेना है। क्रमांक 287। द्रव्य सदा निर्लेप है, पर्याय में सबसे निर्लेप रहने जैसा है। कहीं खेद नहीं करना, खींचना नहीं, कहीं अधिक राग नहीं करना। क्रमांक 288। वस्तु सूक्ष्म है, उपयोग स्थूल हो गया है। सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने के लिए सूक्ष्म उपयोग का प्रयत्न कर। क्रमांक 299। चैतन्य की गहरी भावना तो अन्य भाव में भी चैतन्य के साथ ही आती है। आत्मा तो शाश्वत पदार्थ है ना, ऊपरी विचारों में नहीं परंतु अंतर में मंथन करके तत्व विचार पूर्वक गहरे संस्कार डाले होंगे तो वे साथ आएंगे। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह भव्य पुरुष भविष्य में होने वाली मुक्ति का अवश्य भाजन होता है। क्रमांक 290। आत्मा ज्ञान प्रधान अनंत गुणों का पिंड है। उसके साथ अंतर में तन्मयता करना वही कर्तव्य है। वस्तु स्वरूप को समझकर मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसी लगन लगाए तो ज्ञायक के साथ तदाकारता हूँ। क्रमांक 291। जिनेंद्र मंदिर, जिनेंद्र प्रतिमा मंगल स्वरूप है, तो फिर समवसरण में विराजमान साक्षात जिनेंद्र भगवान की महिमा और उनके मंगलपने का क्या कहना। सुरेंद्र भी भगवान के गुणों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरे तो क्या कर सकेंगे। क्रमांक 292। जिस समय ज्ञानी की परिणति बाहर दिखाई दे, उसी समय उन्हें ज्ञायक भिन्न वर्तता है। जैसे किसी को पड़ोसी के साथ बड़ी मित्रता हो, उसके घर जाता आता हो, परंतु वह पड़ोसी को अपना नहीं मान लेता, उसी प्रकार ज्ञानी को विभाव में कभी एकत्व परिणमन नहीं होता। ज्ञानी सदा कमल की भांति निर्लेप रहते हैं, विभाव से भिन्न रूप ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। क्रमांक 293। ज्ञानी को तो ऐसी ही भावना होती है कि इस समय पुरुषार्थ चले तो इसी समय मुनि होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, बाहर आना पड़े वह अपनी निर्बलता के कारण है। क्रमांक 294। ज्ञानी को मैं ज्ञायक हूँ ऐसी धारावाही परिणति अखंडित रहती हैं। वे भक्ति शास्त्र स्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगों में उल्लासपूर्वक भाग लेते दिखाई देते हैं, तब भी उनकी ज्ञायक धारा तो अखंडित रूप से अंतर में भिन्न ही कार्य करती रहती हैं। क्रमांक 295। यद्यपि दृष्टि अपेक्षा से साधक को किसी पर्याय का या गुण भेद का स्वीकार नहीं है, तथापि उसी स्वरूप में स्थिर हो जाने की भावना तो वर्तती है। रागांश रूप बहिर्मुखता उसे दुख रूप से वेदन में आती है और वितरागता अंश रूप अंतर्मुखता सुख रूप से वेदन में आती है। जो आंशिक बहिर्मुख वृत्ति वर्तती हो, उससे साधक न्यारा का न्यारा रहता है, आँख में किरकिरी नहीं समाती। उसी प्रकार चैतन्य परिणति में विभाव नहीं समाता। यदि साधक को बाह्य में प्रशस्त अप्रशस्त राग में दुख न लगे और अंतर में वितरागता में सुख न लगे, तो वह अंतर में क्यों जाए। कहीं राग के विषय में राग आग दहे ऐसा कहा हो, कहीं प्रशस्त राग को विषकुंभ कहा हो, चाहे जिस भाषा में कहा हो, सर्वत्र भाव एक ही है कि विभाव का अंश वह दुख रूप है। भले ही उच्च में उच्च शुभ भाव रूप या अति सूक्ष्म राग रूप प्रवृत्ति हो, तथापि जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है और जितना निवृत्त होकर स्वरूप में लीन हुआ उतनी शांति एवं स्वरूपानंद है। क्रमांक 296। द्रव्य तो सूक्ष्म है, उसे पकड़ने के लिए सूक्ष्म उपयोग कर। पाताल कुएं की भांति द्रव्य में गहराई तक उतर जा तो अंतर से विभूति प्रकट होगी। द्रव्य आश्चर्यकारी है। क्रमांक 297। 13 कार्य तो तत्वानुसारी परिणमन करना है। जड़ के कार्य तेरे नहीं हैं, चेतन के कार्य चेतन होते हैं, वैभाविक कार्य भी परमार्थ से तेरे नहीं हैं। जीवन में ऐसा ही घुट जाना चाहिए कि जड़ और विभाव वे पर हैं, मैं वह नहीं हूं। क्रमांक 298। ज्ञानी जीव निशंक तो इतना होता है कि सारा ब्रह्मांड उलट जाए तब भी स्वयं नहीं पलटता। विभाव के चाहे जितने उदय आए तथापि चलित नहीं होता। बाहर के प्रतिकूल संयोग से ज्ञायक परिणति नहीं बदलती, श्रद्धा में फेर नहीं पड़ता। पश्चात क्रमशः चारित्र बढ़ता जाता है। क्रमांक 299। वस्तु स्वतः सिद्ध है, उसका स्वभाव उसके अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं। स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु का दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव उसे अनुकूल है, राग द्वेष रूप विभाव प्रतिकूल है। क्रमांक 300। परिभ्रमण करते अनंत काल बीत गया, उस अनंत काल में जीव ने आत्मा का करना है, ऐसी भावना तो की परंतु तत्वरुचि और तत्वमंथन नहीं किया। रुचने में तो एक आत्मा ही रुचि, ऐसा जीवन बना लेना चाहिए।